Sri Chaitanya Charitamrita Madhyalila, chapter 6, text number 84.
Madhyalila Adhyaya 6, Shlok Sankhya 84.
The chapter is entitled The Liberation of Sarvabhauma Bhattacharya.
Adhyaya ka naam hai Sarvabhauma Bhattacharya ki Mukti.
So this title is, this chapter is entitled The Liberation of Sarvabhauma Bhattacharya.
Is adhyay ka shishak hai Sarvabhauma Bhattacharya ki mukti.
Sarvabhauma Bhattacharya was the greatest scholar of his time.
Sarvabhauma Bhattacharya apne samay ke sabse mahan pandit the.
He was the head of the disciple succession followers of Shankaracharya. So he was a very big personality, very famous throughout India.
वह उस समय जो शंकराचार्य की परंपरा थी, उनके जो followers थे, उनके वह मुख्य थे.
Chaitanya Mahaprabhu has come to Jagannath Puri as an unknown sannyasi.
Chaitanya Mahaprabhu Jagannath Puri आ चुके हैं, सन्यास लेने के बाद एक सन्यासी के रूप में.
He went and saw Lord Jagannath, and because he sees Jagannath as Tribhanga Krishna, he does not see as we see. He sees Tribhanga Krishna in the form of Jagannath.
जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन किए, तो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी को त्रिभंग कृष्ण के रूप में देखते हैं. वह जैसे हम दर्शन करते हैं, उस प्रकार से दर्शन नहीं करते.
So seeing Krishna, he passed out in Mahabhav.
कृष्ण है महाभाव के अंदर.
Because Chaitanya Mahaprabhu is Krishna in the mood of Radharani. So in one sense you could say that Mahaprabhu consists more of Radharani than of Krishna.
चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण है राधा रानी के रूप में.
His famous compassion and mercy is Radhika actually.
तो उनका जो प्रसिद्ध करुणा है और दया है वह श्रीमती राधा रानी.
His famous golden complexion is Radhika. So there's more Radharani in Mahaprabhu than there is Krishna.
जो उनका स्वर्ण कांति है वह श्रीमती राधा रानी की है. तो एक रूप में देखे श्रीमती राधा रानी का उनमें ज्यादा.
So this golden sannyasi has offered dandavats pranams in the temple room of Lord Jagannath and he passed out, went into a very deep samadhi.
तो ये स्वर्ण कांति के जो सन्यासी हैं, इन्होंने जगन्नाथ जी को दर्शन करने के बाद प्रणाम किया और बहुत ही गहरी समाधि में चले गए.
Like the pandas, the priests of Jagannath Puri are not very sympathetic to ISKCON. I mean, they are outright opposed to ISKCON devotees. So although Mahaprabhu has passed out on the floor and they're ready to kick him or beat him, you know, this is low class. They cannot be considered pure devotees. Who could respond to Mahaprabhu by wanting to kick him, beat him?
तो जगन्नाथ मंदिर के जो पांडा थे, वह महाप्रभु की स्थिति को समझ नहीं पाए. और महाप्रभु जिस प्रकार से पृथ्वी पर लेटे हुए थे, तो वह उनको उठा के बाहर रखना चाहते थे. वह उनको लात मारने की सोच रहे थे. तो इससे हम देखते हैं कि वह बहुत महान ऐसे कोई उच्च स्थिति के वैष्णव के रूप में हम उन्हें नहीं देख सकते.
Simply because I've never seen an effulgent golden Vaishnava like that before. So there's this Tamagung, you know, such highly placed priest, Tamagung, and we see that their descendants, the same attitude towards this kind of devotees. Doesn't matter, Radha Swami, Jayapataka Swami. Prabhupada himself, he argued Shastra with the big pundits, and Prabhupada was undefeatable, but they were not honest men, not honest men. Although Prabhupada quoted hundreds of shlokas, they weren't interested. They had their agenda.
तो वहाँ के पांडव ने देखा ये कौन स्वर्ण एक सन्यासी के रूप में यहाँ पर पड़े हुए हैं, तो इनको समझ नहीं पाए. और आज भी हम देखते हैं कि यही रवैया उनके स्कॉन के भक्तों के प्रति भी है. प्रभुपाद से जब उनका तर्क हुआ, प्रभुपाद कहते थे हर श्रेणी के व्यक्ति जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं, और प्रभुपाद को तर्क में हराया नहीं जा सकता था. उन्होंने कई सौ श्लोक उदित किए शास्त्र से, परंतु वह वहाँ पे ईमानदार नहीं थे.
So he's an unknown sannyasi. He passes out on the floor in the temple room. The pandas, the priests, They go get Sarvabhauma Bhattacharya because he's the scholar. So they figure they were. So no, and he gave the order. No, don't beat him. We first of all have to try to figure out what is going on. He's a genuine sadhu, but let's figure out what is going on. Something very unusual here. He's not an ordinary sadhu. We have to be proceed with caution. We have to see what is the situation here. The Sarvabhauma has a brain at least, whereas the other men were just like gundas, you know.
तो उन्होंने देखा कि मंदिर के कक्ष में जब महाप्रभु ऐसे लेटे हुए हैं तो उन्हें समझ नहीं आया कौन व्यक्ति है क्या कर रहा है. तो उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य को बुलाया क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य एक महान पंडित थे. तो उन्होंने आके कहा इनके साथ ऐसा बर्ताव मत कीजिए, पहले हमें ये सुनिश्चित कर लेना होगा कि वास्तव में एक महान भक्त है या कौन है, ढोंगी है.
So Chaitanya Mahaprabhu was in Mahasamadhi. He was lying on the floor. There were no symptoms of life.
Chaitanya Mahaprabhu ek Mahasamadhi ke andar pravesh kar chuke the. Vah zameen pe pade hue the aur unke andar sharir ke koi lakshan nahi, jeevan ke lakshan nahi dikhai de rahe the.
He was not sleeping. He was in very deep Mahabhav meditation.
Aisa nahi hai ki vah so rahe the. Vah bahut hi गहरी एक महाभाव समाधि के अंदर थे.
Some thought that he was dead. I mean, they're fools, you know. They're in the presence of the Supreme Personality of Godhead, and they're fools.
कई जो वहाँ के पांडा थे, उन्होंने सोचा कि ये मृत हो चुके हैं.
But at least Sarvabhauma Bhattacharya had some intelligence. So he was priest in charge. So at least he had some intelligence.
तो सार्वभौम भट्टाचार्य वहाँ के मुख्य पुजारी थे.
He wanted to figure out what kind of sannyasi is this. There's something different about him. He's not ordinary sannyasi.
तो वे ये पता करने का प्रयास कर रहे थे कि किस प्रकार के सन्यासी हैं.
So he held a cotton swab.
दोनों ने रुई का एक टुकड़ा पकड़ा.
Up to the nose of Mahaprabhu.
महाप्रभु की नाक के आगे उसको रखा.
This was the test.
ये एक परीक्षा थी.
You could see that the cotton was moving slightly, although Mahaprabhu's chest was not going up and down with normal breathing pattern. But he could see there was slight disturbance to the cotton, and thus he could understand that Mahaprabhu was alive.
हालांकि महाप्रभु की छाती ऊपर नीचे नहीं हो रही थी, परंतु जब उन्होंने रुई का टुकड़ा महाप्रभु की नाक के आगे रखा, तो उन्होंने देखा बहुत हल्का सा वह हिलना शुरू हुआ.
Was attracted by Mahaprabhu from the very beginning, although he could not understand who he was.
हालांकि सार्वभौम भट्टाचार्य ये नहीं समझ सके कि महाप्रभु कौन है, परंतु वे शुरुआत से ही उनके तरफ बहुत आकर्षित थे.
So he ordered Mahaprabhu to be taken to his home.
दोनों ने निर्देश दिया कि महाप्रभु को उनके घर पे ले जाया जाए.
So he would observe the sannyasi. Is he bona fide? Is he He tending to believe he was bona fide, very beautiful, of course. So he's tending to believe that he is bona fide sannyasi, but something very peculiar about him. We don't know what kind of sannyasi he is. So he has a lot of doubts and concerns, but still some fatherly feeling is there to take care of the Lord. So he brings him to his own home.
तो वह चैतन्य महाप्रभु को अपने घर पे ले गए सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रमाणिक सन्यासी है या नहीं. हालांकि उनका स्वर्ण मुद्रा देख के, उनका वेशभूषा देख के वे बहुत आकर्षित हुए और उनका, परंतु वे महाप्रभु में देख रहे थे कुछ विचित्र ही बात है. उनके मन में बहुत संशय थे, तो वह इसको सुनिश्चित कर लेना चाहते थे.
So this is the background for this chapter.
तो इस अध्याय का ये पृष्ठभूमि है.
Then, after Mahaprabhu returns to external consciousness, they began having a dialogue. Himself and Sarvabhauma Bhattacharya began to have a dialogue of philosophy, because Sarvabhauma wants to figure out, so what school is he with? And this was like the first thing before there was any philosophical discussion. If all right, what's your line of disciplic succession? What schooler were you? What is your siddhanta? They would begin with the basic foundation of identification, you know.
जब चैतन्य महाप्रभु बाह्य चेतना में आए, तो सार्वभौम भट्टाचार्य और उनके बीच में वार्तालाप हुआ। सार्वभौम भट्टाचार्य ने उनसे कुछ प्रश्न पूछे कि आप कौन हैं, आप कौन से संप्रदाय से हैं, आप कौन सी परंपरा से आ रहे हैं। तो एक इंट्रोडक्शन के रूप में वार्तालाप शुरू हुआ और सिद्धांत की भी चर्चा हुई।
Our nuclear professor here.
तो यहाँ पे ये प्रोफेसर हैं।
If you say, well, I'm a nuclear scientist.
Nuclear वैज्ञानिक।
And the first thing people are going to say, really? What university did you go to? Very first question. Oh, what is your credential? First question is going to be, really? That's amazing. So what's your credential? That is the first question.
अगर पता चले कि ये प्रभु जी न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं तो सबसे पहला प्रश्न होगा कि आपने क्या क्या किया है इस क्षेत्र के अंदर, आपके क्या क्रेडिट्स हैं, क्रेडेंशियल्स हैं।
Well, this is Sarvabhauma Bhattacharya's question for Chaitanya Mahaprabhu. What is your credential? You seem to be a very nice sannyasi, but what is your credential?
तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने भी श्री चैतन्य महाप्रभु से ये प्रश्न पूछे कि आप एक बहुत अच्छे सन्यासी हैं, तो आपकी क्या क्या विशेषताएं हैं, आपने क्या क्या किया हुआ है।
Then he finds out that Chaitanya Mahaprabhu has taken initiation in sampradaya that he considers to be lower.
उन्हें फिर ज्ञात हुआ कि चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया है एक ऐसे संप्रदाय के अंदर जिसको सार्वभौम भट्टाचार्य निम्न श्रेणी का समझते थे।
And so he says, Sarvabhauma Bhattacharya suggested, if Sri Chaitanya Mahaprabhu would like, I could bring him to into a first class sampradaya by offering him saffron cloth, performing the reformatory process again. He wants to reinitiate him, basically.
So Sarvabhauma Bhattacharya ne kaha ki main aapko jo param sampradaya hai sanyas ashram ka, main usme aapko dobara dikshit kar sakta hu.
So he wanted to change him from the Saraswati Sampradaya to the from the Bharati Sampradaya or Puri Sampradaya. He wanted to change him to Saraswati Sampradaya, which would be followers of Shankaracharya. So he wants to reinitiate him.
तो चैतन्य महाप्रभु ने भारतीय संप्रदाय के अंदर संन्यास लिया था। सार्वभौम भट्टाचार्य ने उन्हें कहा कि मैं तुम्हें सरस्वती संप्रदाय के अंदर, जो शंकराचार्य की परंपरा आ रही थी, इस संप्रदाय के अंदर मैं तुम्हें दीक्षा दे सकता हूँ।
Then Gopinath Acharya gets involved in the argument with the disciples of Sarvabhauma Bhattacharya.
उसके बाद गोपीनाथ आचार्य ने सार्वभौम भट्टाचार्य के शिष्यों के साथ तर्क किया।
Basically, Chaitanya Mahaprabhu is the supreme personality of Godhead. He's not subject to all these externals. This is all nonsense, rubbish. Give it up.
कि श्री चैतन्य महाप्रभु परम पुरुषोत्तम भगवान हैं। वह किसी बाहरी औपचारिकता पर निर्भर नहीं है। उन्हें किसी श्रेष्ठ संप्रदाय से संन्यास ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है।
So this brings us to the 84th verse. We have to always have the context what's going on before we just jump in. This is the context of what's going on here in the dialogue between Sarvabhauma Bhattacharya and Sri Chaitanya Mahaprabhu.
तो अब हम आज के श्लोक पे आए हैं, तो हमें ये पिछला पृष्ठभूमि इसका पूरा जानने की आवश्यकता थी। सार्वभौम भट्टाचार्य और चैतन्य महाप्रभु के बीच में वार्तालाप चल रहा है।
Now, Sarvabhauma Bhattacharya is going to quote a shloka from the 10th canto of the Srimad Bhagavatam.
अब सार्वभौम भट्टाचार्य 10वें स्कंद से एक श्लोक उद्धृत करेंगे।
And that is what's written on the board, yes?
जो कि बोर्ड पर लिखा है।
Bhagavatam 10, 14, 20, yes? Hello?
10, 14?
Srimad Bhagavatam 10th canto 14th chapter 29
yes.
verse is what's supposed to be written on the board.
Yes, Maharaj.
Yes? So this is not Bengali, this is Sanskrit, okay? So we will not be chanting the usual Bengali, sing-songy Bengali style. It will be chanted as a Bhagavatam shloka, okay?
So we will chant this Bhagavatam shloka as a Bhagavatam.
अतः पिते देव पदम
भुजद्वया
प्रसाद Besannu grihita evahi. Janati tadvam bhagavan mahimno. Nachanya eko pichiram vichinvinvan. Nachanya eko pichiram vichinvan. You're jumping too fast. Follow the others. Listen. Atapite deva parambuja devaya.
Atapite deva parambuja devaya.
Prasada lesan grihita evahi. Prasada lesan grihita evahi. Janati tatvam bhagavan mahimno. Chanya eko bichiram vichinva. Atapite deva padam bhujadvaya. Prasada lesanu grihita evahi. Janati tatvam bhagavan mahimno. Chanya eko bichiram vichinva.
अनुवाद. हे प्रभु, यदि आपके चरण कमलों की रंच मात्र भी कृपा किसी पर हो जाए तो वह आपकी महानता को समझ सकता है, किंतु जो लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझने के लिए तर्क वितर्क करते हैं, वे अनेक वर्षों तक वेदों का अध्ययन करते रहने पर भी आपको जानने में अक्षम रहते हैं. तात्पर्य, ये श्लोक श्रीमद् भागवतम 10.14.29 का है. ब्रह्म संहिता 5.33 का कथन है, वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो. यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ज्ञान के चरम लक्ष्य हैं, वेदेश्य सर्वर अहम एव वेद्या, किंतु जो शुद्ध भक्त नहीं है और भगवान की सेवा में नहीं लगा हुआ है वह उन्हें समझ नहीं सकता. अतः ब्रह्मा जी इसकी पुष्टि करते हैं, वेदेशु दुर्लभम, मात्र स्वाध्याय द्वारा भगवान को समझ पाना अत्यंत कठिन है. अदुर्लभम आत्म भक्तों, किंतु भक्तों के लिए भगवान को समझना अत्यंत आसान है. भगवान अजीत कहलाते हैं, अर्थात वे जीते नहीं जा सकते. पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को कोई नहीं जीत सकता, किंतु वे अपने भक्तों द्वारा पराजित किए जाने के लिए प्रस्तुत रहते हैं. यही उनका स्वभाव है, जैसा कि पद्म पुराण में कहा गया है, अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भवेत ग्राहिम इंद्रिया सेवो मुखे ही जीवादु स्वयं एव स्फूर्ति अदा. भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान अपने भक्तों के समक्ष प्रकट होते हैं. उन्हें समझने की यही विधि है. गोपीनाथ आचार्य द्वारा उद्धृत किया गया श्रीमद् भागवतम का यह श्लोक ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण से पराजित होने पर कहा था. ब्रह्मा जी ने कृष्ण की शक्ति की परीक्षा करने के लिए सारे बछड़ों तथा ग्वाल बालों को चुरा लिया था. ब्रह्मा जी ने यह स्वीकार किया कि इस ब्रह्मांड में उनकी अपनी असाधारण शक्ति कृष्ण की असीम शक्ति के समक्ष पूर्णतया तुच्छ है. यदि कृष्ण को समझने में ब्रह्मा जी तक भूल कर सकते हैं तो साधारण व्यक्तियों के विषय में क्या कहा जाए, जिन्हें कृष्ण के विषय में गलत भ्रांतियां हैं या अपनी इंद्र तृप्ति के लिए वे किसी को कृष्ण का तथा कथित अवतार कहकर स्थापित करते हैं.
Oh, this is Gopinath Acharya, confidential associate of Sri Chaitanya Mahaprabhu. He is preaching to Sarvabhauma Bhattacharya and Sarvabhauma Bhattacharya's followers. So that is who is speaking here.
ये श्लोक गोपीनाथ आचार्य द्वारा उद्धृत किया गया है और गोपीनाथ आचार्य चैतन्य महाप्रभु के जो नित्य परिकर हैं उनमें से एक हैं. वे सार्वभौम भट्टाचार्य और उनके शिष्यों को प्रचार कर रहे हैं.
Going back to the 81st verse, Gopinath Acharya says, "One cannot attain the real knowledge of the Supreme Personality of Godhead by such logical hypothesis and argument.
श्लोक संख्या 81 में गोपीनाथ आचार्य ने उत्तर दिया, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में वास्तविक ज्ञान इस प्रकार के अनुमान तथा तर्क से प्राप्त नहीं किया जा सकता। ज्ञानी और मुनि सिर्फ यही करते हैं।
Logical hypothesis and argument. That's their whole program.
अनुमान और तर्क यही उनका पूरा प्रोग्राम है।
Generally is devoid of bhakti. They're interested in discussing truth. It's all flowery words.
साधारणतः वे उनमें भक्ति का अभाव होता है। वे बहुत बातें करते हैं परंतु वे
This is what was going on in Navadvip.
और यही नवद्वीप की स्थिति थी।
The time of appearance of Nimai Pandit. It was the philosophical headquarters of India. There were always big debates, just like now you've got cricket games.
निमाई पंडित के समय पर जो नवद्वीप है वह पूरे भारत की दार्शनिक के संबंध में राजधानी थी।
In those days, whole stadiums or pandas would fill up with philosophical speculators and they would bring up their hypothesis and argumentation and very dry, nothing having to do with the lotus feet of the Lord, nothing.
बड़े-बड़े पंडाल में बहुत सारे ज्ञानी लोग आते थे और दर्शन प्रस्तुत करके एक दूसरे से तर्क करते थे, तो ये बहुत ही सूखा है, इसमें भगवान के विषय में खास चर्चा नहीं थी।
So Gopinath Acharya is pointing out very bluntly that you cannot attain knowledge of the Supreme Lord through this dry, speculative process. Through Gyan, ultimately, you cannot get. You must attain the mercy of a Vaishnava first. That you have to have first, the mercy of a Vaishnava. Then, to get the Bhakti Lata Bija, only a Vaishnava can award the Bhakti Lata Bija. The Supreme Personality of God Himself does not award the Bhakti Lata Bija. His authorized representative does. This point, we have to download this point.
Gopinath Acharya ji ne bahut spasht roop se uttar diya ki tark ke dwara bhagwan ko nahi samjha ja sakta. Bhagwan ko samajhne ke liye ek vaishnav ki kripa hona avashyak hai. Jab vaishnav ki kripa hoti hai to hame bhakti lata beej milta hai.
It certainly may
be. Aur ye bhakti lata beej bhagwan nahi de sakte, sirf ek vaishnav de sakta hai.
Supreme Personality of Godhead arranges if you have sincerity He will award you a bona fide spiritual master. If you don't have sincerity, then he'll lead you to some long-haired yogi that speaks flowery words and smokes bidis and goes after the pretty girls in his following. If you're not sincere, but if you're sincere, then Krishna as a super soul will detect Chaita Guru.
The Param Purushottam Bhagwan sara prabandh karte hain ki agar aap gambhir hain, to vah nishchit roop se aapko ek pramanik guru bhejenge. तो ये भगवान के द्वारा दिया गया सब प्रबंध है परंतु अगर उनको समझने के लिए गंभीर नहीं है तो वह अलग अलग मार्ग भी दिखाएंगे
So everyone present here is most fortunate because they have been sent by the Supreme Personality of Godhead to the lotus feet of a bona fide spiritual master.
तो आप सब जो यहाँ पर बैठे हैं हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि भगवान ने हमारे जीवन में प्रबंध किया है कि हम एक प्रमाणिक गुरु के संरक्षण में हैं
The bona fide spiritual master for ISKCON is Srila Prabhupada.
ISKCON ke liye jo pramanik guru hai vah hai Srila Prabhupada.
Then he created many bona fide spiritual masters in the form of his advanced disciples. They are bona fide guru also.
Jo unke unnat shishya the, unhone Srila Prabhupada ji ne unko pramanik guru ke roop mein sthapit kiya. To vah bhi pramanik guru hai.
Chaitanya Mahaprabhu, the following the teachings of Chaitanya Mahaprabhu, Das and Ardas. Well, they are not independent of Prabhupada. If you think that you're a Diksha Guru or you're an aspiring Guru, if you think he's independent from Prabhupada, then you're a fool.
Dasa Anudas, jo Guru hai, vah bhi Srila Prabhupada ke anugat hai. Agar aap samajhte hain ki aapke Diksha Guru swatantra hain, to aap murkh hain.
It's sort of the Achintya Veda Veda Tattva concept.
Ye ek prakar se Achintya Veda Veda Tattva ka siddhant hai.
He is one with Prabhupada and different also. So if you, this is the correct Siddhanta. No fog in the brain. What is the position of my God brothers in ISKCON? Achintya Veda Tattva. They are one with Prabhupada and different also. They are not on the same level as Prabhupada. Yes and no. You understand? It's not a cheap linear ABC answer. Yes and no. But generally, as a matter of, we understand that he is Mahabhagavat Nitya Siddha, and none of my god brothers claim to be on that level. Not one.
तो वह श्रीला प्रभुपाद जी से एक भी हैं और अलग भी हैं। तो ये कोई बहुत ऐसा कोई साधारण सिद्धांत नहीं है, ये बहुत ही उच्च सिद्धांत है। श्रीला प्रभुपाद एक महाभागवत हैं, सिद्ध महात्मा हैं। तो हो सकता है कि मेरे जो गुरु भाई हैं, वह उस स्थिति पे ना हो, शायद एक भी ना हो, परंतु फिर भी वह श्रीला प्रभुपाद के साथ एक मायने में एक भी है।
नित्य सिद्ध eternally liberated soul, Saktivesh Avatar, who descended from the spiritual world.
Nitya Siddha, Shakta Vishesh Avatar, jo adhyatmik jagat se avtarit hue hain.
My god brothers do not claim to have descended from the spiritual world. They were created by Prabhupada, although they were. And it is not required to descend from the spiritual world to be a bona fide spiritual master. This bogus philosophy is propagated by the Ritvik school that the only bona fide spiritual master is Mahabhagavat or Paramahansa. It's not a fact. It's not supported by Shastra.
And Maharaj is telling that his guru brother, no one says that we have adhyatmik jagat se avtarit hue hain. And not only adhyatmik jagat, a guru ke liye adhyatmik jagat se aana, avtarit hona, ye koi avashyakta hai. Aisa galat siddhant Ritvik samaj ke andar phailate hain ki guru ko आध्यात्मिक जगत से आना चाहिए तभी वह गुरु बन सकता है परंतु यह गलत सिद्धांत है ऐसा आवश्यक नहीं है
Then in the last verse 83 Gopinath Acharya he is arguing the classic Vaishnav position he is a sold out devotee of Chaitanya Mahaprabhu he's one of Mahaprabhu's senior confidential associates. Hare Krishna. Welcome to Bhagavad Sangha. Very fortunate man.
So Gopinath Acharya, Sri Chaitanya Mahaprabhu ke bahut hi vishesh bhakt hain aur vah yahan pe tark kar rahe hain.
Now when the devotees are as eager to hear Harikatha as this ant that is approaching me, this is very good. Govinda, 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 Govinda. Should not be minimized. This ant that is hearing Harikatha will take next birth as a devotee without fail due to contact with the absolute truth spoken by Vaishnavas.
तो यहाँ पे एक चीटी थी जिन्होंने अभी अभी शरीर छोड़े हैं भागवतम क्लास के अंदर तो महाराज बता रहे हैं कोई साधारण चीटी नहीं है
By circumambulating the microphone he is circumambulating the absolute truth
तो वह चीटी माइक की परिक्रमा कर रही है और वह अगला जीवन निश्चित रूप से
कृष्ण के रूप में we have to conclude this simple ant is more fortunate than Millions of residents of the city of Delhi. That's a fact. Hari Bhav!
Hari Bhav!
Hari Bhav!
Hari Bhav! So, a sadharan si chiti, jo microphone ki parikrama kar rahi hai, Maharaj bata rahe hain, ye Delhi vasiyon, jo lakho Delhi vasiyon, jo Krishna Bhavana Amrit nahi hai, unse jyada saubhagyashali hai.
So, one can understand the Supreme Personality of Godhead only by His mercy. Not by guesswork or hypothesis. That's 82, verse 82.
Gopinath Acharya ne aage kaha, yadi kisi ko bhakti dwara bhagwan ki leshmatra bhi kripa praapt hoti hai, to vah poorn purushottam bhagwan ko tatva se samajh sakta hai.
So in Navayudham, big pandits would sometimes come arriving in elephants, you know, and they'd be famous. And they'd be undefeatable, and they'd come with thousands of followers, and then they would grab everybody's wealth and whoever was defeated would be driven into the Ganga they would run for their life they would beat them this was how they played the game in those days by guesswork and hypothesis gyanis
us samay navdeep ke andar bahut mahan pandit gyani बड़े बड़े हाथियों पे सवार होके आया करते थे और तर्क के अंदर उन्हें कोई नहीं हरा सकता था, ज्ञानी थे.
Combined with that, Veda Veda Ratis, that means those who are externally careful follower of the Vedas without understanding anything what the Vedas mean, but just parroting everything mechanically like an MP3 player. Veda Veda Ratis, very mechanical, very shallow, and missing the point of the lotus feet of the Lord. That is Veda Veda Ratis. Followers of the Vedas, no clue as to the purpose of the Vedas. No clue. Just flowery words caught up in it.
तो ये लोग उस प्रकार से हैं कि वैदिक नियमों को पालन करने में बाह्य रूप से बहुत सावधान रहते हैं, परंतु जो वैदिक शास्त्रों का मूल लक्ष्य है उससे चूक जाते हैं. ये उसी तरीके से हुआ जैसे कोई MP3 प्लेयर है, सारे वही लेक्चर्स बोलेगा, वही कीर्तन करेगा, परंतु उसके अंदर कोई डेप्थ नहीं है, उसको कोई समझ नहीं है.
Well, this is what was going on in the time of Nimai Pandit, and there was a small group of Vaishnavas, like headed by Advaitacharya and Haridas Thakur, Shivas Thakur, a very small select group of Vaishnavas. They would get together for Harikatha and Kirtan, and the rest, whole rest of that would be for all these impersonalists.
और पूरा नवद्वीप ऐसे लोगों से भरा हुआ था. भक्तों वैष्णव का समाज बहुत ही छोटा था. अद्वैत आचार्य, हरिदास ठाकुर, श्रीवास पंडित सिर्फ गिने चुने भक्त थे जो एकत्रित होते थे और हरि कीर्तन करते थे. एक दिन श्रीवास ठाकुर जी के घर पर कीर्तन उन्होंने प्रारंभ किया, तो बहुत ही क्रोध ब्राह्मण आसपास से आए.
We're going to tear this place down. We're going to burn it to the ground.
और वो बहुत जोर जोर से चीखने लगे, हम इस जगह को आग लगा देंगे.
These Vaishnavas will ruin everything. The Muslim government will attack us because of the loud chanting of these Vaishnavas.
इन वैष्णवों ने सब कुछ तबाह कर दिया है. अब जो मुस्लिम राजा है वह यहाँ आएगा और हर चीज तबाह कर देगा. ये इतना जोर जोर से कीर्तन करते हैं.
So they were actually demons.
तो वह ब्राह्मण वास्तव में असुर थे.
It is said in the Shastra that sometimes in Kali Yuga, demons will take their birth as Brahmins for this kind of demoniac activity of mental speculations and activities against the Supreme Lord. They're bankrupt, in other words, spiritually bankrupt, practically.
तो शास्त्र में कहा गया है कलि युग के अंदर जो असुर हैं वह एक ब्राह्मण के रूप में जन्म लेंगे और ये बहुत भगवान के विपरीत कार्य करेंगे.
Yet those with sincerity amongst the jnanis, if they were not puffed up and proud like this, but the majority, 98% of them were puffed up and proud and not correctable, unless they were smashed in a public debate and they didn't have any choice.
और उन ज्ञानियों में से जो गंभीर ज्ञानी हैं, क्योंकि हम देखते हैं 98% जो ज्ञानी हैं वे बहुत ही घमंड से भरे होते हैं, बहुत गिरे चुने.
2% or less who might sincerely be interested in absolute truth, then they would be led into association devotee Nasteva, Nasteva, Nasteva. If they had a pinch of sincerity, then they would be led, just like Sarvabhaumacharya was led to association of Gopinathacharya and Chaitanya Mahaprabhu himself. He was awarded. It's awarded.
बचे हुए 2% ज्ञानियों में से अगर किसी में रंच मात्र भी ये सिंसियर इच्छा है परम सत्य को जानने के लिए, तो उन्हें भक्तों का संग आशीर्वाद के रूप में दिया जाएगा. जैसे कि हम यहाँ देखते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ, उन्हें भक्तों का संग ये एक आशीर्वाद के रूप में प्राप्त हुआ.
Don't ever take Krishna consciousness for granted, then you're doomed.
कभी भी आप कृष्ण भावना मृत को
first class recipe for falling down is when you take sadhusanga, when you take for granted the association of devotees and don't realize that it's been awarded to you on a gold plate by the Supreme Personality of Godhead due to your pious activities in the past. It is handed to you, sadhusanga, association of devotees is, present tense, being handed to you on a gold plate by the Supreme Lord Himself. Don't forget this for a split moment. It is a privilege.
ये कृष्ण भावनामृत आपको और ये जो भक्तों का संघ है भगवान के द्वारा आशीर्वाद के रूप में दिया हुआ है. इसको कभी भी सस्ता मत लीजिए किसी भी परिस्थिति के अंदर इस बात को हमेशा स्मरण रखिए
एवरीवन प्लीज बहारम जन्म नमते गर्वमवत पपज्यन्ते असदेव सर्वमिति समाहमस्तु दुर्लभा अगेन नाउ दैट द स्पाइडर वेब्स हैव वॉर्न ऑफ अगेन से द श्लोका लाउडली बहारम जन्म नमते गर्वमवत पपज्यन्ते असदेव सर्वमिति समाहमस्तु दुर्लभा आफ्टर मेनी मिलियंस ऑफ बर्थ्स वन मे एंडेवर फॉर परफेक्शन
कई लाखों लोगों में से कोई एक व्यक्ति है जो सिद्धि प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है और उनमें से जो सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं
See, perfection has different definitions. But in this context of Bhagavad Gita, perfection is referring to understanding that you're not this body. Brahma-bhuta-pala.
सिद्धि की कई परिभाषाएं हैं परंतु इस श्लोक में जो सिद्धि की परिभाषा यही है कि अगर आप ये समझ चुके हैं कि आप शरीर नहीं आप आत्मा हैं
सुदृढ़ so Krishna says very rare hardly one knows me in truth out of those who have enough sincerity to somehow or other come to the point of understanding there's more to the absolute truth than word jugglery still Out of millions of such persons, Krishna says, hardly one knows me in truth.
कई लाखों लोगों में से एक व्यक्ति प्रयास करता है सिद्धि के लिए और उन व्यक्तियों में से जो सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं वे जान चुके हैं शरीर नहीं आत्मा है कोई गिना चुना एक ही होता है कि जो भगवान कृष्ण को सत्यता से जानता है वास्तविकता में जानता है
Because it's awarded. I'm going to say again and again like a stuck CD. It's awarded. Sarasanga is awarded. You have been awarded the opportunity here today to associate with devotees. It didn't fall out of the sky. It didn't come because of all your, you know, fruit of activities. Never.
ये जो साधु संघ है, ये आशीर्वाद के रूप में दिया गया है। मैं इसको बार-बार दोहरा रहा हूँ, बार-बार दोहरा रहा हूँ कि आप इसको अच्छे समझ लें कि ये ऐसा नहीं है कि आसमान से गिर गया है या हमारे जो पुराने कर्म हमने किए हैं उसके अनुसार हमें ये संघ प्राप्त हुआ है नहीं इसको आशीर्वाद के रूप में भगवान के द्वारा उनके भक्तों के द्वारा हमें दिया गया
In the past life, perhaps you offered a glass of water to a sadhu, to a Vaishnav, perhaps. And from that, you are awarded the opportunity to sit here in this Harikatha Chaitanya Charitamrita class this morning. If you simply offered a glass of water to a sadhu in a past life, you must be proactive. It cannot fall out of the sky. Never mechanical. Never.
हो सकता है आप पिछले जन्म में एक वैष्णव के रूप में रह चुके हो या किसी भी रूप से आपने किसी वैष्णव की सेवा की हो एक साधु को पानी का गिलास दिया हो पीने के लिए कुछ भी हो तभी ऐसा संभव है कि आज हम चैतन्य चरित्र में भक्तों के संग में सुन पा रहे हैं
Our sampradaya is based 100% on descending mercy.
हमारा जो संप्रदाय है 100% ये जो कृपा है ऊपर से नीचे आती है
Our only business is how to catch that mercy if the, like the Chikori bird, the bird that drinks only water out of, huh? What's it called? Chatak bird is the one that drinks water only out of the sky. We have to be like that. And this example is given by Prabhupada.
हमें जातक पक्षी की तरह होना चाहिए ये पक्षी सिर्फ जो आसमान से पानी गिरता है बारिश के रूप में सिर्फ वही पानी पीता है पृथ्वी का पानी नहीं पीता हमें उसी प्रकार से होना है ये कृपा ऊपर से नीचे की ओर बहती है और हमें इसको स्वीकार करना चाहिए
This is the ocean of the nectar devotion. And if we can get in a few drops, that is enough to jumpstart us into the path of bhakti.
ये भक्ति रसामृत सिंधु है। इसके एक बूंद भी मिल जाए, तो हम इस भक्ति के मार्ग में हमारा शुरुआत हो सकती है।
Only a few drops, so powerful.
सिर्फ कुछ बूंदे ही, वही इतनी शक्तिशाली हैं।
The bhakti lata bija of the nitya siddha devotees. We have got that association.
भक्ति लता बीज जो नित्य सिद्ध भक्त हैं हमें उनका संग प्राप्त हो चुका है
Just like Prabhupada told us,
जिस प्रकार श्रील प्रभुपाद ने हमें बताया
this Shat Goswami Ashtaka song.
Ye Shat Goswami Ashtak jo geet hai.
Bande Rupa Sanatana Nago Yu. Come on, can't hear you.
Shriva Gopala Go.
Bande
Rupa Sanatana Nago Yu Go. Shri Jiva Gopala Go.
Bande Rupa Sanatana Nago Yu Go.
Shri Jiva Gopala Go.
So Prabhupada told us that whoever sings this song is in direct association with the six Goswamis. Whoever sings this song.
Srila Prabhupada ji ne hame bataya, jo bhi ye geet gaata hai Shat Goswami Ashtak, vah seedha sang kar raha hai Shat Goswamiyon ka.
That's why the devotees in our line who have sincerity must constantly be engaged in Harikatha, Haribhajan. It is required constantly.
इसलिए हमारे भक्तों को चाहिए कि वे निरंतर हरि कथा करें.
Otherwise, manavatena.
हमेशा इस पे मननन करें.
You know manavatena?
अच्छा, नहीं तो मनोरथेन. अगर हरि कथा नहीं करेंगे.
What means manavatena?
मनोरथेन. मनोरथेन इस शब्द का क्या अर्थ होता है?
Charity of the mind. Very good. Hare Krishna. It's either or. It's either Harikatha or included in Harikatha, besides Krishna's pastimes, besides Gaura Lila, included in Harikatha is discussion of the science of devotional service and what needs to be done. There's also Harikatha. It is not inferior. Only a fool suggests that discussion of how to execute devotional service is inferior to Harikatha. Then there it is.
या तो हरि कथा होगी. हरि कथा का अर्थ है कृष्ण लीला गौर लीला के अलावा कि भक्ति के नियमों को किस प्रकार इनका पालन किया जाए, किस प्रकार भक्ति में आगे बढ़ा जाए, इस पर चर्चा. अगर कोई कहता है कि सिर्फ कृष्ण लीला ही हरि कथा है तो यह बहुत बड़ा मूर्ख है.
But at the same time, on the order of Acharya, we must also do Harikatha of the name, form, pastimes, qualities, activities, entourage of the Lord. We have to do that also, because if you just work hard, do your service and work hard, but if you don't take in enough nectar from this descending ocean of mercy, if you don't take in enough Harikatha nectar, in addition to discussing devotional service, the actual pastimes of the Lord, actual bhajans, if you don't take enough of that, then your life, even brahmacharya life, becomes very dry. And we see then the brahmacharya starts thinking, I should get married, or I should do this or that.
तो पूर्ववर्ती आचार्यों के निर्देश पे हमें इस पे चर्चा करनी चाहिए. भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, इन सब भजन को गाना चाहिए, इन पे मनन करना चाहिए. नहीं तो अगर हम सिर्फ सेवा करते रहेंगे और जो ऊपर से कृपा आ रही है इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे तो हमारा आध्यात्मिक जीवन बहुत सूखा हो जाता है. और फिर एक ब्रह्मचारी के इस प्रकार विचार आते हैं, शायद मुझे अब शादी कर लेनी चाहिए.
So Gopinathacharya's argument is very powerful, pure Vaishnava Siddhanta.
Gopinath Acharya ka jo ye tark hai bahut hi shaktishali hai, Vaishnav Siddhant ke upar adharit hai.
If one receives but a tiny bit of the Lord's favor.
Yadi main keh rahe hai Prabhu, yadi aapke charan kamlo ki ransh matra bhi kripa kisi par ho jaye.
By dint of devotional service.
Ransh matra bhi kripa kisi par ho jaye.
He can understand the nature of the Supreme Personality of Godhead.
तो वह आपकी महानता को समझ सकता है.
The 84th verse again. My Lord, if one is favored by even a slight trace of the mercy of your lotus feet.
हे प्रभु, यदि आपके चरण कमलों की रंच मात्र कृपा किसी पर हो जाए.
He can understand the greatness of your personality.
तो वह आपकी महानता को समझ सकता है.
For those who speculate in order to understand the Supreme Personality of Godhead.
किंतु जो लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझने के लिए तर्क वितर्क करते हैं.
Are unable to know you.
वह आपको जानने में अक्षम है.
Even though they continue to study the Vedas for many years.
हालांकि वह अनेक वर्षों तक वेदों का अध्ययन करते रहते हैं.
Point is, the Bhakti Lata Bija Although we discussed the Bhakti-lata bija as growing from this plane up to the spiritual world, penetrating through the layers of the universe, crossing over the Viraja river and entering into the spiritual realm and touching the lotus feet of the Lord. Generally, we describe the Bhakti-lata bija in this way.
साधारण रूप से जो भक्ति लता बीज है उसका वह इस प्रकार से हम बताते हैं कि भक्ति लता बीज इस भौतिक ब्रह्मांड को चीरते हुए विरजा नदी के पार आध्यात्मिक जगत में किस प्रकार भगवान के चरण कमलों तक पहुंचता है
And the process is not only is the bhakti lata bija ascending but it's also descending first it descends the bija or the seed descends
तो ये भक्ति लता बीज का जो पौधा है हमेशा ऊपर चलता रहता है बट इसका ऊपर से नीचे भी आता है जो भक्ति लता बीज है पहले ऊपर से नीचे हमें दिया जाता है
planted by the mercy of the devotees by the mercy of guru and vaishnav
इस भक्ति लता बीज को अंकुरित किया जाता है
and then it grows
वैष्णव और भगवान की कृपा के माध्यम से
into this powerful tree that goes all the way up to the lotus feet of the Lord in Brajadham
और फिर वह एक बहुत ही महान पेड़ के रूप में विस्तार होता है और भगवान के चरण कमलों तक पहुंचता है
must drop from the lotus hand that seed must drop from the lotus hand of a Vaishnav this is the whole point
परंतु यह जो बीज है सबसे पहले एक वैष्णव के कर कमलों के द्वारा हमें दिया जाता है
mechanical way not by mental speculations not by word jugglery
इस भक्ति लता बीज को किसी भी प्रकार के हम मनगढ़ंत तर्क करने से
Therefore, in the Bhagavad Gita, Krishna advises Arjuna, give up the flowery words of the Vedas. They cannot help you because it's mixed. It's not pure devotional service.
इसलिए श्रील प्रभुपाद ने कहा है कि जो फूलों सी भाषा है वैदिक शास्त्रों के अलग अलग भाई नियम है इसको छोड़ दीजिए इससे आपका कुछ नहीं होगा
And Narada Muni directly chastised the great Srila Vyasadeva and said, You have misled the people, first canto. You have misled the people. You've taught them all this fruit of activity in the Vedas, and you have not given the path of pure devotional service. You have not spoken about the glories of the Supreme Personality of Godhead. That's why you're despondent. It is your nonsense. He chastised them very severely.
और हम देखते हैं श्रील नारद मुनि ने अपने महान शिष्य व्यास देव जी को बहुत डांटा कि आपने जो साधारण लोग हैं अब उनको भ्रमित कर दिया है ये वेदों का रचना करके आपने परम पुरुषोत्तम भगवान का गुणगान नहीं किया अभी तक
So to be successful in Krishna consciousness, at every split moment we have to try to appreciate, I am receiving descending mercy from Guru and Vaishnavas right now. My life, my breath, my life, my soul is the mercy of Guru and Vaishnavas. I am nothing else.
Krishna
That's the only way you'll make it.
कृष्ण भावनामृत में सफलता प्राप्त करने के लिए हम सबको प्रत्येक क्षण हर क्षण ये समझना होगा कि मेरा जो आध्यात्मिक जीवन है अभी मुझे कृपा प्राप्त हो रही है गुरु और भगवान की और इस कृपा को हमें इसकी प्रशंसा करनी होगी
Just like every day at Srila Prabhupada's Guru Puja.
जैसे कि प्रतिदिन हम श्रील प्रभुपाद जी की गुरु पूजा करते हैं
We are singing, Your mercy is all that I am made of. That's not poetry.
और हम ये गाते हैं कि मैं
सिर्फ any disciple or any aspiring disciple who thinks otherwise has missed the point
हम प्रतिदिन गाते हैं कि मैं सिर्फ आपकी कृपा से ही बना हुआ हूं तो हर शिष्य को ये समझना चाहिए और ये इसका
whatever I am sitting here today as a sannyasi whatever I am sitting here today as a Prabhupada disciple senior devotee and so forth whatever I may be
तो मैं आज यहाँ पे एक सन्यासी के रूप में और एक वरिष्ठ प्रभुपाद जी के शिष्य हैं उसके रूप में बैठा हुआ हूँ
I have been created by Srila Prabhupada, that's a fact.
और आप कुछ भी कह सकते हैं परंतु
It's not that I have, there's a saying in America, pulling yourself up by your own bootstraps, you know, some boots have straps on them, you know, pulling yourself up by your own shoes, it's not like that.
तो मैं जो भी हूँ अभी सिर्फ शिला प्रभुपाद जी की कृपा के कारण ही हूँ शिला प्रभुपाद जी कृपा से ही मैं बना हुआ हूँ अमेरिका में एक सेइंग है कि कोई व्यक्ति अपने बूट चढ़ा के खुद एक सेल्फ मेड मैन के रूप में बनता है
मेक दैट योर होल डे लॉन्ग डे एंड आउट 365 डेज ईयर प्लीज मेक योर मेडिटेशन आई एम मर्सी ऑफ गुरु एंड गुरांगा I am mercy of Vaishnavas. I have no other life but the mercy I am receiving from Vaishnavas and Guru. May, you must recite that to yourself every day so you don't become puffed up and sink into the gross bodily concept.
आप सब कृपया प्रतिदिन इस बात पर इसकी प्रशंसा की इस पर मनन कीजिए कि मैं सिर्फ गुरु और वैष्णव की कृपा से ही बना हुआ हूँ और इसको आपको उसका उच्चारण करना चाहिए प्रतिदिन 365 दिन साल के अंदर ताकि आप कभी भी घमंड में ना आए और ये जो देहात्मक बुद्धि के स्तर पे ना आए.
Any questions, comments, corrections?
किसी का कोई प्रश्न है या टिप्पणी?
जगगुरु श्री प्रभुपाद की जय. गिरिराज गोविंद की जय. श्री जगन्नाथ स्वामी बलदेव सुभाष की जय. श्री श्री कृष्ण बलराम राधिक्रमा की जय. ग्रंथ श्रीमद चैतन्य चरितमृत की जय. नित्य गोप प्रेमानंद की जय.